इप्सिता ने अभिमन्यु की चिंता देखकर समझाते हुए कहा, हमने आपको अपने बारे में बहुत कुछ बताया है और आप हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते। हालात जैसे भी हों अभिमन्यु, लेकिन आपको ये बात माननी होगी कि कुछ दिनों बाद हमारी शादी है। अगर आप अभी जिस तरह से बातें छिपा रहे हैं, आगे भी इसी तरह से छिपाते रहे, तो क्या आपको लगता है हमारा रिश्ता ज्यादा दिन चलेगा? इप्सिता की बात सुनकर अभिमन्यु ने नज़रें चुराते हुए धीमी आवाज़ में कहा, इप्सिता, वो मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। मैं बचपन से ही किसी भी बंद और अंधेरी जगह से डरता हूँ। अभिमन्यु ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। इप्सिता ने परिपक्वता से जवाब दिया, ये ठीक है, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हम समझते हैं अभिमन्यु, और वैसे भी हर इंसान को किसी न किसी चीज़ का डर होता है, और आप भी इंसान ही हैं। भले ही लोगों ने आपको कुंवर बनाकर ऊंची पोजीशन पर बिठाया है, लेकिन अंदर से आप भी एक सामान्य इंसान हैं, हम सब की तरह। इसलिए इतना दबाव और तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अभिमन्यु इप्सिता की ओर देखने लगा। इप्सिता ने आगे कहा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हमने कुछ गलत कहा? हम बस आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि डर पर हमारा काबू नहीं होता। जो सच में आपको प्यार करते हैं, वे आपको कभी भी इसके लिए जज नहीं करेंगे। अभिमन्यु ने राहत महसूस करते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद इप्सिता, मुझे समझने के लिए और इतनी अच्छी तरह से समझने के लिए। इप्सिता ने थोड़े शिकायती अंदाज में कहा, आप मुझे तो थैंक यू बोलने से मना करते हैं और खुद ही मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, ये सही नहीं है। इप्सिता ने बनावटी नाराज़गी दिखाते हुए कहा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे और किस चीज़ से डर लगता है आपको? अभिमन्यु ने कहा, अच्छा तो अब आप ही मेरा मजाक उड़ा रही हैं। इप्सिता ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं बस आपकी चिंता में पूछ रही थी। आखिर हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि जिनसे हमारी शादी होने वाली है उनके बारे में। इप्सिता चुप हो गई। अभिमन्यु ने उसे देखा और कहा, और किसी भी चीज़ से नहीं डरता हूँ, बस ये अंधेरे का डर पता नहीं क्यों इस कदर समाया हुआ है, नहीं निकलता मेरे जहन से। ये कहते हुए अभिमन्यु के माथे पर बल पड़ गए। इप्सिता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने कहा ना, ये ठीक है, इतना मत सोचिए इस बारे में, और वैसे भी हो सकता है बाद में कभी ये डर ठीक हो जाए। अभिमन्यु ने अपना सिर हिलाया। इप्सिता उठकर खड़ी हुई और बोली, ठीक है, अब आप आराम करिए, हम भी सोने जाते हैं। असल में कल हमें नंदिनी से मिलने जाना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के कुछ नोट्स और हमारा आईडी कार्ड उसके पास है। हम एग्ज़ाम से पहले ही उसे ले लेना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी चीज़ को लापरवाही करें और फिर एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम हो। इसीलिए हम कल सुबह सुबह ही नंदिनी से मिलने चलेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभिमन्यु ने तुरंत कहा, नहीं तो भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, और वैसे आप अकेले क्यों जाएंगे, मैं भी चलूंगा आपके साथ। इप्सिता ने पूछा, लेकिन आपको तो काम होगा ना? अभिमन्यु ने जवाब दिया, नहीं, कल सुबह मैं फ्री हूँ और इसी बहाने हम भी नंदिनी से मिल लेंगे। आप तैयार हो जाइएगा, बताइए कितने बजे चलना है सुबह? इप्सिता ने कहा, लगभग 10-11 बजे चलेंगे, अभी हम चलते हैं। इप्सिता कमरे से बाहर जाने लगी। अभिमन्यु ने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए इप्सिता। इप्सिता ने पीछे मुड़कर देखा। अभिमन्यु उसके पास आया और सीरियस होते हुए बोला, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? इप्सिता ने कहा, हाँ बिल्कुल बोलिए ना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अभिमन्यु ने झिझकते हुए कहा, अभी मैंने जो अपने डर वाली बात बताई है, कृपया उसे आप अपने तक ही रखिएगा। मैं नहीं चाहता वो बात आप अपने परिवार या दोस्तों में किसी से भी शेयर करें, नंदिनी और उदयवीर से भी नहीं। इप्सिता हैरानी से उसे देखने लगी। अभिमन्यु ने सफाई देते हुए कहा, मैंने ये बात अपने घर में भी किसी से नहीं बताई, यहाँ तक अर्पिता और मासा को भी इस बारे में नहीं पता, और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये बात पता चले, क्योंकि एक कुंवर सा होने के साथ साथ मेरी कई सारी जिम्मेदारियां हैं, और अगर ये बात बाहर के लोगों को पता चली तो वे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, बस इसलिए। इप्सिता ने उसकी बात काटी, चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं बताने वाली, ये बात हमारे बीच ही सीक्रेट रहेगी, और वैसे भी मैं इतनी पर्सनल चीज़ किसी से भी शेयर नहीं करती, नंदिनी से भी नहीं। अभिमन्यु को तसल्ली हुई और वो हल्का सा मुस्कुराया। इप्सिता एक कन्फ्यूज सी मुस्कान लिए अपने कमरे में चली गई। अभिमन्यु अपने बिस्तर पर बैठ गया और बोला, वैसे मैं इप्सिता पर इतना यकीन तो कर सकता हूँ, अगर उन्होंने मुझे कहा है कि वे किसी से भी इस बारे में कुछ नहीं बताएंगी, तो मुझे लगता है वे नहीं बताएंगी। वो बिस्तर पर लेट गया और उसे राहत मिली। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। इप्सिता अपने कमरे में चली गई। वो अभिमन्यु के लिए बहुत चिंतित थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से लाइट चली जाए और अंधेरे में अकेले होने की वजह से अभिमन्यु फिर से घबरा जाए। अभिमन्यु के फोबिया के बारे में जानने के बाद से ही इप्सिता उसकी चिंता कर रही थी। अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए इप्सिता को देर तक नींद नहीं आई। वो सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और वो बार बार अभिमन्यु की चिंता कर रही थी। इप्सिता उठकर बैठी और बोली, मैं क्यों अभिमन्यु को लेकर इतना सोच रही हूँ? मुझे लगता है जब तक मैं उन्हें एक बार जाकर चेक नहीं कर लूंगी मुझे नींद नहीं आएगी। रात के 1 बज रहे थे। इप्सिता ने अपने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला और अभिमन्यु के कमरे के पास गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला, वो अंदर से बंद नहीं था। इप्सिता ने अंदर झांक कर देखा तो अभिमन्यु कमरे की सारी लाइट्स जलाकर सो रहा था। उसे सोते देखकर इप्सिता ने चुपचाप दरवाजा बंद कर लिया। अपने कमरे में आकर गहरी सांस लेते हुए बोली, चलो अभिमन्यु सो गए हैं तो अब मैं भी सो जाती हूँ, वरना सुबह उठने में लेट हो जाऊंगी। इप्सिता बिस्तर पर लेट गई और उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह 8 बजे इप्सिता की आंख खुली। वो जल्दी से उठी और तैयार होने के लिए बाथरूम में चली गई क्योंकि आज उसे नंदिनी से मिलने जाना था। इप्सिता के तैयार होते होते 9 बज गए थे। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकली उसने अलमारी खोली और सोचने लगी कि वो आज कैसे कपड़े पहने। उसने एक लाइट पिंक रंग का लॉन्ग डिजाइनर कुर्ता निकाला और नीचे ब्राउन रंग की पैंट निकाली। उस लॉन्ग कुर्ते के साथ पैंट पेयर अप करके शीशे के सामने खड़ी होकर देखने लगी कि वो उस पर कैसा लग रहा है। उसे वो आउटफिट ज्यादा अच्छा नहीं लगा। उसने वो कपड़े बिस्तर पर फेंक दिए और अलमारी से दूसरे कपड़े निकालने लगी। इप्सिता आमतौर पर जो भी हाथ में आ जाए पहन लेती थी, लेकिन अभी अभिमन्यु के साथ है तो वो थोड़े आरामदायक और स्टाइलिश कपड़े पहनना चाहती थी। इसीलिए उसने एक लूज डिजाइनर शर्ट निकाली और उसके नीचे उसने ब्लू डेनिम की स्किनी फिट जीन्स निकाली। उन दोनों को पेयर अप करके ड्रेसिंग मिरर में देखा तो वो उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसने वही कपड़े पहन लिए। इप्सिता ने अपने बाल खुले छोड़ दिए और हल्का मेकअप करके सैंडल निकालने लगी। जीन्स के साथ जूते भी अच्छे लगते, लेकिन तभी उसे याद आया कि अभिमन्यु की लंबाई काफी ज्यादा है और ऐसे में अगर वो फ्लैट पहनेगी तो उसकी लंबाई और भी कम लगेगी। अभिमन्यु की लंबाई 6 फीट से भी ज्यादा थी। इप्सिता की लंबाई भी अच्छी थी लेकिन 5 फीट 7 या 8 इंच ही होगी। इसीलिए उसने सोचा कि आज वो उसके साथ जा रही है इसीलिए हील्स पहनेगी। ये सोचकर उसने ब्लैक रंग की हील्स निकाल ली और वो हील्स पहन ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। दरवाजे पर किसी के खटखटाने पर इप्सिता ने देखा, वहां अभिमन्यु खड़ा था। उसने रॉयल ब्लू रंग की शर्ट और नीचे ऑफ व्हाइट रंग की जीन्स पहनी हुई थी और साथ में उसने ऑफ व्हाइट रंग का ब्लेजर भी पहना हुआ था। वो काफी हैंडसम लग रहा था। इप्सिता ने जल्दी से हील्स पहनते हुए कहा, अभिमन्यु आप यहाँ? अभिमन्यु कमरे में आते हुए बोला,
तैयार हो गई आप? हम आपको ही देखने आए थे। शांता काकी ने नाश्ता तैयार कर लिया है, वो आपको बुलाने आ रही थी तो हमने सोचा हम उन्हें परेशान क्यों करें, हम ही आपको बुला लेते हैं। इप्सिता मुस्कुराते हुए बोली, किसी और को भेज देते, आपने क्यों तकलीफ की? अभिमन्यु ने आराम से कहा, अरे मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आप तैयार तो है ना? अगर आपको समय लगने वाला है तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। इप्सिता ने कहा, अरे नहीं मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अब मुझे समय नहीं लगेगा, चलिए चलते हैं। इप्सिता आगे बढ़ ही रही थी कि उसकी हील फिसल गई और वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने जल्दी से एक हाथ से इप्सिता का हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ उसकी कमर में डालकर उसे पकड़ते हुए कहा, संभल कर इप्सिता। गिरने के डर से इप्सिता ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अभिमन्यु की आवाज़ सुनते ही उसने नज़र उठाई और अभिमन्यु की आंखों में देखने लगी। क्रमशः